एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम रॉन चर्नो की बहुत ही मशहूर किताब द हाउस ऑफ मॉर्गन्स पर बात करने वाले हैं। ये किताब मॉर्गन बैंकिंग साम्राज्य के बारे में है। मॉर्गन ये नाम आज भी मतलब फाइनेंस की दुनिया में गूंजता है।
बिल्कुल, और चर्नो जो पुलित्जर और नेशनल बुक अवार्ड विनर है, वो इसे सिर्फ एक बैंक या एक परिवार की कहानी की तरह नहीं देखते। ये असल में एक महागाथा है कि कैसे आधुनिक अमेरिकी और यहाँ तक कि ग्लोबल फाइनेंस बना, कैसे एक परिवार के हाथ में एक बैंक ने सरकारों जितना असर डाल दिया।
तो ये कहानी आज भी क्यों जरूरी है? मतलब 100 साल से ज्यादा पुरानी बात है, तो आज के सुनने वालों के लिए इसमें क्या है?
देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक प्राइवेट संस्था ने अमेरिका के पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को शेप दिया, बाजारों को स्थिर किया, विश्व युद्धों की फाइनेंसिंग की, और जो आज हम वॉल स्ट्रीट का कल्चर देखते हैं ना, उसकी नींव रखी। ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है।
तो ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें आज के लिए भी सबक हैं, जैसे हम आज की बड़ी टेक कंपनियों या ग्लोबल बैंकों को देखते हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल। ये वो एक परमानेंट टेंशन दिखाता है प्राइवेट कैपिटल और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच का, जो आज भी उतना ही सच है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे फाइनेंस की दुनिया, जो कभी व्यक्तिगत चरित्र और रिश्तों पर चलती थी, वो धीरे धीरे कैसे ट्रांजैक्शनल हो गई, इंस्टीट्यूशनल पावर पर आधारित हो गई।
तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कहानी न्यूयॉर्क से नहीं, कहीं और से शुरू होती है।
हाँ, ये थोड़ी हैरानी की बात है। कहानी शुरू होती है विक्टोरियन लंदन से। एक अमेरिकन बैंकर थे, जॉर्ज पीबॉडी। उन्होंने एक तरह से मॉडल बनाया यूरोप की पूंजी को अमेरिका के विकास में लगाना।
अच्छा,
और फिर मॉर्गन परिवार इस सीन में कैसे दाखिल हुआ?
पीबॉडी के उत्तराधिकारी बने जूनियस स्पेंसर मॉर्गन। वो कनेक्टिकट के एक व्यापारी थे जो 1854 में पीबॉडी से जुड़े, और बाद में उन्होंने फर्म का नाम रखा जेएस मॉर्गन एंड को। यहीं से कह सकते हैं उस राजवंश की नींव पड़ी।
तो जूनियर्स का अंदाज क्या था? उन्होंने लंदन की पुरानी परंपराओं और अमेरिका के नए जोश को कैसे मिलाया?
उन्होंने लंदन की जो कंजर्वेटिव भरोसे वाली बैंकिंग थी, उसको अमेरिका की जो नई एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी थी, उसके साथ जोड़ा। उनका फोकस सिर्फ सौदों पर नहीं, बल्कि लंबे रिश्तों पर था। वो अमेरिका के रेल रोड, फैक्ट्रियां, मतलब देश का जो पूरा ढांचा बन रहा था, उसे फाइनेंस कर रहे थे।
और उनके बेटे जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन, यानी जेपी मॉर्गन, जिन्हें हम सब जानते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई?
पिता से ही सब सीखा।
हाँ, जेपी मॉर्गन ने ये सबक बचपन से ही देखे और सीखे। पढ़ाई स्विट्जरलैंड और जर्मनी में हुई, तो एक ग्लोबल नजरिया मिला, पर असली ट्रेनिंग तो पिता के लंदन ऑफिस में ही हुई। वहां उन्होंने समझा कि बैंकिंग सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन, रिलेशनशिप्स और टाइमिंग का खेल है।
क्या कोई ऐसा शुरुआती मौका था जिसने मॉर्गन परिवार को या जेपी मॉर्गन को खास तौर पर आगे बढ़ने में मदद की?
अमेरिकी गृह युद्ध, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देश में उथल पुथल थी और सरकार को पैसे की सख्त जरूरत थी। मॉर्गन ने यूनियन सरकार के लिए कर्जों का इंतजाम किया। इससे उनकी साख बनी कि मुश्किल वक्त में भी पैसा जुटा सकते हैं। इसी दौरान जेपी मॉर्गन न्यूयॉर्क आ गए पिता के एजेंट के तौर पर। न्यूयॉर्क उस वक्त अमेरिका का नया फाइनेंशियल सेंटर बन रहा था।
तो ये तो शुरुआती साल थे, एक तरह से नींव रखी जा रही थी, लेकिन जेपी मॉर्गन एक कामयाब बैंकर से वो फाइनेंशियल टाइटन कैसे बने जिसकी हम बात करते हैं?
ये हुआ 1870 और 80 के दशक में। असल बदलाव आया रेल रोड फाइनेंसिंग से। उस जमाने में रेल कंपनियां बहुत थीं और आपस में भयानक कॉम्पिटिशन था। रेट वॉर चल रही थी जिससे सब बर्बाद हो रहे थे।
यहीं पर वो मॉर्गनाइजेशन वाली बात आती है, सही कहा ना? ये क्या था असल में?
बिल्कुल, जेपी मॉर्गन ने एक नया तरीका निकाला जिसे मॉर्गनाइजेशन कहा गया। वो सिर्फ लोन नहीं देते थे, वो पूरी इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करते थे। कंपटीशन करने वाली कंपनियों को साथ लाते, उनके खर्चे कम करवाते, और सबसे अहम बात, उनके बोर्ड में अपने लोग बिठाकर उनकी स्ट्रैटेजी तय करते थे।
तो मतलब वो एक तरह से कंपटीशन खत्म करके कंट्रोल चाहते थे। क्या ये सिर्फ मुनाफे के लिए था या कोई और सोच थी?
कंट्रोल तो चाहते थे, पर उनका मानना था कि कंपटीशन बेकार है, डिस्ट्रैक्टेंट है। वो मानते थे कि कंसोलिडेशन यानी कंपनियों को मिला देने से रैशनैलिटी और एफिशिएंसी आती है। ये उस जमाने की सोशल डार्विनिज्म वाली सोच से भी मेल खाता था, जहां माना जाता था कि ताकतवर का जीतना ही तरक्की है। इसी मॉडल से उन्होंने विशाल ट्रस्ट बनाए, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, AT&T।
और शायद सबसे बड़ा उदाहरण US स्टील का था, दुनिया की पहली अरब डॉलर कंपनी।
सही का। 1901 में उन्होंने कार्नेगी स्टील समेत कई स्टील कंपनियों को मिलाकर US स्टील बनाया। ये उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी, दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन। ये उनकी ताकत और उनके विजन का प्रतीक था।
लेकिन सिर्फ कंपनियों को मिलाने से तो इतनी ताकत नहीं आई होगी, सरकार के साथ उनके रिश्ते कैसे थे, उसका क्या रोल था?
वो बहुत ही अहम पहलू है। 1895 में एक ऐसा वक्त आया जब अमेरिकन ट्रेजरी मतलब सरकार का खजाना लगभग खाली हो गया था। सोने का भंडार खतरनाक स्तर तक गिर गया था। राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने कांग्रेस की बजाय सीधे JP Morgan से मदद मांगी।
व्हाइट हाउस में वो मशहूर मीटिंग मुझे याद है, मैंने पढ़ा था। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन हो।
हाँ बिल्कुल, बहुत नाटकीय था। मॉर्गन व्हाइट हाउस गए और अपनी शर्तों पर, काफी सख्त शर्तों पर, सरकार को करीब $65 मिलियन का सोना उधार दिया। उन्होंने एक तरह से अमेरिकी सरकार को अपने क्लाइंट की तरह ट्रीट किया। इस एक घटना ने उन्हें सिर्फ एक अमीर बैंकर नहीं बल्कि एक किस्म का शैडो सेंट्रल बैंकर बना दिया, एक ऐसी हस्ती जिसकी ताकत सरकार से भी ज्यादा लग रही थी।
ये तो ताकत का मतलब चरम था, लेकिन क्या ऐसी ताकत खतरनाक नहीं होती? क्या यहीं से मुश्किलें भी शुरू हुई?
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में JP Morgan की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली लगने लगे थे। 1907 में जब अमेरिका में एक बड़ा फाइनेंशियल पैनिक मतलब संकट आया, तो ये बात और साफ हो गई। बैंक डूब रहे थे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा था, पूरी अर्थव्यवस्था हिल रही थी और सरकार के पास इसे रोकने का कोई कारगर तरीका नहीं था।
और तब मॉर्गन ने फिर से मोर्चा संभाला,
वो भी 70 साल की उम्र में।
हाँ, 70 साल की उम्र में।
मॉर्गन ने न्यूयॉर्क के सभी बड़े बैंकरों को अपनी शानदार लाइब्रेरी में बुलाया, कहते हैं दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें मजबूर किया कि वो मिलकर एक रेस्क्यू प्लान बनाए। उन्होंने फैसला किया कि कौन सा बैंक बचेगा, किसे पैसा मिलेगा, कौन सा डूबेगा। उन्होंने एक तरह से अकेले ही अर्थव्यवस्था को ढहने से बचा लिया।
लेकिन इससे लोगों में डर भी तो बैठ गया होगा कि एक अकेले आदमी के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है।
बिल्कुल, यही सफलता उनके लिए परेशानी का कारण बनी। उनकी ये बेहिसाब ताकत जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, उसने आम लोगों और नेताओं को डरा दिया। नतीजा ये हुआ कि 1912 में अमरीकी कांग्रेस की एक कमेटी बनी, प्यूजो कमेटी, जिसने इस मनी ट्रस्ट की जांच शुरू की। उन पर इल्जाम लगा कि कुछ गिने चुने लोग पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। मॉर्गन ने पूछताछ का सामना तो बड़ी डिग्निटी से किया, लेकिन कहते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। 1913 में उनकी मृत्यु हो गई।
और ये भी कमाल की बात है कि उनकी मौत के कुछ ही महीनों बाद अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम बना। एक तरह से सरकार ने वो ताकत अपने हाथ में ले ली जो अनौपचारिक रूप से मॉर्गन के पास थी।
हाँ, ये इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ है। उनके बाद उनके बेटे JP Jack Morgan Jr. ने फर्म संभाली। जैक का व्यक्तित्व पिता से बहुत अलग था। वो ज्यादा शर्मीले थे, पब्लिक फिगर नहीं बनना चाहते थे, पर्दे के पीछे से काम करते थे।
लेकिन जैक के दौर में भी मॉर्गन फर्म की अहमियत कम नहीं हुई, खासकर पहले विश्व युद्ध के दौरान।
नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुई, बल्कि शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ गई। जैक के नेतृत्व में मॉर्गन हाउस ने पहले विश्व युद्ध में मित्र देशों यानी ब्रिटेन और फ्रांस के लिए फाइनेंसिंग और प्रोक्योरमेंट एजेंट का काम किया। उन्होंने अरबों डॉलर के हथियार और सप्लाई खरीदे और करीब $1.5 अरब के लोन का इंतजाम किया। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। इससे फर्म की ग्लोबल पावर तो बढ़ी, लेकिन कुछ विवाद भी हुए कि वो युद्ध से मुनाफा कमा रहे हैं।
और फिर आई महामंदी, 1929 का क्रैश और उसके बाद का दौर, उसने तो सब कुछ बदल दिया। फिर वो ग्लास-स्टीगल एक्ट आया, उसका क्या असर हुआ?
1929 की महामंदी और उसके बाद 1930 के दशक में हुई पिकोरा जांच ने वॉल स्ट्रीट के खिलाफ जनता का गुस्सा और शक बहुत बढ़ा दिया। इसी माहौल में 1933 में ग्लास-स्टीगल एक्ट पास हुआ। इस कानून का सबसे बड़ा असर यह था कि इसने बैंकों को दो तरह के काम एक साथ करने से रोक दिया। एक तो आम लोगों से डिपॉजिट लेना और लोन देना, जिसे कमर्शियल बैंकिंग कहते हैं, और दूसरा कंपनियों के शेयर और बॉन्ड बाजार में लाना और उनकी ट्रेडिंग करना यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग।
ये तो मॉर्गन हाउस के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा,
क्योंकि उनकी ताकत तो इन दोनों कामों को मिलाकर ही बनती थी ना।
बिल्कुल, ये उनके लिए एक वजूद का संकट था। उन्हें चुनना पड़ा कि वो किस तरफ जाएंगे। 1935 में मॉर्गन हाउस दो हिस्सों में बट गया। एक बना कमर्शियल बैंक जेपी मॉर्गन एंड को, जो बाद में मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट बना, और दूसरा एक नया इन्वेस्टमेंट बैंक बना, मॉर्गन स्टैनली, जिसे जैक के बेटे हेनरी मॉर्गन और हैरल्ड स्टैनली जैसे कुछ पुराने पार्टनरों ने मिलकर शुरू किया। तो वो जो एक सदी से चला आ रहा एकजुट मॉर्गन साम्राज्य था, वो खत्म हो गया। इसके बाद इन दोनों फर्मों ने फाइनेंस की बदलती दुनिया में, जिसे चैरनो कैसिनो युग भी कहते हैं, अपने अपने अलग रास्ते बनाए।
ये तो पूरी कहानी हो गई, लेकिन इस सब के पीछे मॉर्गन परिवार का, खासकर जेपी मॉर्गन का, सोचने का तरीका क्या था? उनका मूल दर्शन, उनकी वैल्यूज क्या थी?
देखिए, उनका नजरिया काफी एलिटिस्ट था। मतलब वो खुद को समाज के ऊंचे तबके का मानते थे। वो फाइनेंस को एक नोबल प्रोफेशन, एक ऊंचा पेशा मानते थे, जिसके लिए बहुत ऊंचे दर्जे का कैरेक्टर, जजमेंट और डिस्क्रिशन, यानी विवेक जरूरी है। जेपी मॉर्गन का तो ये पक्का मानना था कि एक जेंटलमैन की जबान ही उसका बॉन्ड है, और रेपुटेशन यानी इज्जत किसी भी मुनाफे से ज्यादा कीमती है। उनकी वो मशहूर कहावत है ना, मैं उस आदमी को पैसा उधार नहीं दूंगा जिस पर मुझे भरोसा नहीं, चाहे वो दुनिया के सारे बॉन्ड गिरवी रख दे।
और कॉम्पिटिशन के बारे में क्या सोचते थे? उन्हें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था।
हाँ, वो कॉम्पिटिशन को वेस्टफुल मानते थे, बेकार और विनाशकारी। उनका मानना था कि कंसोलिडेशन, मतलब कंपनियों को मिला देने से व्यवस्था आती है, एफिशिएंसी आती है। ये उस दौर की सोशल डार्विनिज्म वाली सोच से भी जुड़ा था कि सबसे फिट का ही सर्वाइव करना नेचुरल है।
क्या उनमें समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी की भावना भी थी, या सब कुछ सिर्फ अपने फायदे और कंट्रोल के लिए था?
उनमें एक तरह का पैटर्नलिस्टिक व्यू था पूंजीवाद को लेकर। मतलब वो मानते थे कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, जिसे फ्रेंच में नोबलेस ओब्लाइज कहते हैं। जेपी मॉर्गन खुद को सिर्फ अपने क्लाइंट्स के पैसे का नहीं, बल्कि अमेरिका की इकोनॉमिक डेस्टिनी का स्टूवर्ड, यानी रखवाला मानते थे। ये सोच उनके 1895 और 1907 के रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिखती है। हालांकि चर्नो ये सवाल भी उठाते हैं कि ये वाकई जिम्मेदारी का भाव था या अपनी पावर और इमेज बनाने का तरीका।
मुनाफे के अलावा और क्या चीजें थी जो उन्हें ड्राइव करती थी? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ था?
नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत और सोशल एक्सेप्टेंस, समाज में मान सम्मान पाना, इसकी भी गहरी चाहत थी। शायद इसलिए कि वो न्यू मनी थे, मतलब उनकी दौलत नई थी, वो पुराने जमींदार या अभिजात वर्ग से नहीं थे। जेपी मॉर्गन का जो विशाल आर्ट कलेक्शन था, या वो जिस तरह म्यूजियम और दूसरे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते थे, वो सिर्फ शौक नहीं था, वो एक तरह से अपनी नई दौलत को पुरानी इज्जत और लेजिटिमेसी में बदलने की कोशिश थी। वो चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि अमेरिकी सभ्यता के एक स्तंभ के रूप में देखें।
और एक और बात, वो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म में बहुत विश्वास रखते थे। मतलब अमेरिका दुनिया में सबसे खास है। अमेरिका के इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को फाइनेंस करना उनके लिए एक तरह का पेट्रियोटिक ड्यूटी, देशभक्ति का काम था। और पहले विश्व युद्ध में मित्र देशों की मदद करने के पीछे भी यही सोच थी। वो इसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचाने की लड़ाई मानते थे।
और जब मुश्किलें आती थी, जैसे कोई फाइनेंशियल पैनिक या फिर सरकारी जांच, तब उनका रवैया कैसा होता था, वो कैसे सामना करते थे? उनका तरीका था ग्रेस अंडर प्रेशर, मतलब दबाव में भी शांति और गरिमा बनाए रखना। वो अपने बेहतर रिसोर्सेज, अपने गहरे कनेक्शंस और अपनी लंबी सोच का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों या मुश्किलों को मात देते थे। 1907 के संकट में, जब सब घबराए हुए थे, मॉर्गन बिल्कुल शांत रहे और व्यवस्थित तरीके से कैपिटल और लीडरशिप को एकजुट किया। प्यूजो कमेटी की जब पूछताछ हुई, तो सवालों के जवाब उन्होंने बड़ी डिग्निटी से दिए, भले ही सवाल अपमानजनक थे। और महामंदी के बाद जब न्यू डील के तहत नए नियम आए, तो उनसे लड़ने की बजाय उन्होंने अडेप्ट किया, रास्ता निकाला, मॉर्गन स्टेनली बनाया। तो वो हालात के हिसाब से ढलते जरूर थे, लेकिन अपने कोर प्रिंसिपल्स पर टिके रहते थे।
चलिए, अब इस लंबी और दिलचस्प कहानी में से तीन ऐसे खास पलों या टर्निंग पॉइंट्स को चुनते हैं जिन्होंने मॉर्गन हाउस की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।
या कि संकट के समय में एक प्राइवेट फाइनेंसर की ताकत सरकार से भी ज्यादा हो सकती है। इसने मॉर्गन को सिर्फ एक बैंकर से बढ़ाकर एक फाइनेंशियल सॉवरेन जैसा बना दिया।
दूसरा अहम मोड़ जिसकी हमने काफी बात की, वो 1907 का पैनिक और उसका रेस्क्यू, जब पूरी फाइनेंशियल सिस्टम ढहने वाली थी और मॉर्गन ने 70 साल की उम्र में आगे बढ़कर स्थिति संभाली। ये उनकी ताकत का शायद सबसे बड़ा प्रदर्शन था।
हाँ बिल्कुल, ये उनकी पावर का पीक था। लेकिन इसी पल ने ये भी उजागर कर दिया कि देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक अकेले अनइलेक्टेड आदमी के हाथ में होना कितना खतरनाक है। इसी घटना के बाद वो पॉलिटिकल विल बनी जिसके कारण 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई। तो ये मॉर्गन की ताकत का शिखर भी था और एक तरह से उनके अनौपचारिक सेंट्रल बैंकर वाले रोल के अंत की शुरुआत भी।
और तीसरा निर्णायक मोड़ कौन सा मानेंगे आप?
वो था ग्लास-स्टीगल एक्ट 1933 और उसके नतीजे में 1935 में हुआ फर्म का विभाजन। महामंदी के बाद जो राजनीतिक माहौल बदला, जो गुस्सा था वॉल स्ट्रीट के खिलाफ और जो पेकोरा जांच हुई, उसने इस कानून को जन्म दिया। और इस कानून ने कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को अलग करने पर मजबूर कर दिया। ये मॉर्गन हाउस के लिए एक तरह से अपने वजूद का सवाल था, क्योंकि उनकी पूरी फिलॉसफी ही इंटीग्रेटेड बैंकिंग पर टिकी थी।
और उन्हें आखिर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मॉर्गन स्टॉनली को अलग करना पड़ा।
जी, उन्हें चुनना पड़ा और उन्होंने कमर्शियल बैंक रखा और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को स्पिन ऑफ कर दिया मॉर्गन स्टैनली के रूप में। इस बंटवारे ने उस एकजुट मॉर्गन साम्राज्य का अंत कर दिया जिसने करीब 70 साल तक अमेरिकी फाइनेंस पर दबदबा रखा था। इसने न सिर्फ मॉर्गन फर्म का भविष्य बदला, बल्कि अमेरिका के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की शक्ल दशकों तक के लिए तय कर दी। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी ताकतें, राजनीति, समाज, नियम फाइनेंस की दुनिया को बदल सकती हैं।
इस पूरी असाधारण कहानी से आज के दौर में हम क्या सीख सकते हैं? इसमें क्या मानवीय सबक छिपे हैं?
सबसे बड़ा सबक तो शायद वही है, निजी क्षेत्र की अपार शक्ति और समाज के प्रति उसकी जवाबदेही के बीच का जो एक निरंतर तनाव बना रहता है। आज जब हम बड़ी बड़ी टेक कंपनियों या ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, तो ये सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट लगता है कि उनकी ताकत समाज को कैसे प्रभावित करती है और वो किसके प्रति जवाबदेह हैं।
हाँ, और ये कहानी फाइनेंस की दुनिया के जो साइकिल होते हैं उन्हें भी दिखाती है ना? कैसे इनोवेशन होता है, फिर एक्सेस मतलब हद से ज्यादा उत्साह और लालच आता है, फिर संकट आता है और फिर रेगुलेशन यानी नए नियम बनते हैं। जैसे 1907 के पैनिक से फेडरल रिजर्व बना, 1929 के क्रैश से ग्लास स्टीगल आया। शायद ये हमें 2008 के संकट और उसके बाद बने नियमों को भी एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखने में मदद करता है।
और जेपी मॉर्गन का वो मूल मंत्र कैरेक्टर इज कैपिटल यानी चरित्र ही पूंजी है, ये बात आज भी कितनी सच लगती है। चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, आपकी रेप्यूटेशन, आपका ट्रस्ट, आपकी साख ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मॉर्गन की सफलता काफी हद तक इसी पर टिकी थी। और आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में भी जहां रेप्यूटेशन पल में बन और बिगड़ सकती है, ये बात शायद और भी ज्यादा मायने रखती है।
ये कहानी लीडरशिप स्टाइल के बारे में भी कुछ कहती है कि कैसे उन्हें पीढ़ियों और बदलते समय के साथ ढलना पड़ता है। जैसे जेपी मॉर्गन का वो दबदबे वाला ऑटोक्रेटिक स्टाइल शायद उनके जमाने के लिए ठीक था, पर उनके बेटे जैक का ज्यादा शांत कॉन्सेंसस बनाने वाला तरीका बाद के दौर के लिए ज्यादा जरूरी साबित हुआ। मतलब लीडरशिप कोई एक फिक्स चीज नहीं है, उसे वक्त के साथ बदलना पड़ता है।
और आखिर में ये कहानी उस मानवीय कीमत पर भी रोशनी डालती है जो इतनी अपार शक्ति और जिम्मेदारी के साथ आती है। वो अकेलापन, वो दबाव, वो दुनिया से एक तरह का अलगाव जो जेपी मॉर्गन महसूस करते होंगे। तो ये सिर्फ पैसे और पावर की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंसान होने के अनुभव की भी कहानी है।
तो इस पूरी गहरी बातचीत से वो कौन सी 3 खास बातें हैं जिन्हें हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं?
पहली, एक भावनात्मक बात, वो है परम वित्तीय शक्ति का अकेलापन। जेपी मॉर्गन जिस शिखर पर थे जहां उनके हर फैसले का असर लाखों लोगों पर पड़ता था, वो स्थिति उन्हें आम मानवीय रिश्तों से और शायद एक हद तक लोकतांत्रिक जवाबदेही से भी अलग करती थी। ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव डालने की एक व्यक्तिगत कीमत होती है। ताकत अक्सर इंसान को अकेला कर देती है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। दूसरी एक बौद्धिक बात क्या होगी?
वो है कि पूंजीवाद कैसे संस्थागत नवाचार यानी इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन के जरिए विकसित होता है। मॉर्गन ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने आर्थिक संगठन के नए रूप बनाए, जैसे रिलेशनशिप बैंकिंग, इंडस्ट्रियल कंसोलिडेशन, सिंडिकेटेड लोन। इन चीजों ने आधुनिक पूंजीवाद को उसका इंस्टीट्यूशनल ढांचा दिया। ये दिखाता है कि पूंजीवाद कोई नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि ये इंसानी चॉइस और इनोवेशन से बनता और बदलता है।
सही कहा। और अंत में एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बात जो सबके काम आ सकती है,
वो है कि स्थायी सफलता की नींव चरित्र ही है। मॉर्गन की कहानी तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद बार बार यही दिखाती है कि रेप्यूटेशन और ट्रस्ट यानी साख और भरोसा किसी भी भौतिक संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है। ये एक टाइमलेस सबक है जो सिर्फ फाइनेंस पर नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। आपकी साख ही आपकी असली पूंजी है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।